ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी है। संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक को पहले ही मंजूर कर चुकी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है और ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून किसी मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। उन्होंने विधेयक को भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है। श्री रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुस्लिमों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी पेश किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ में कोई गैर इस्लामी सदस्य नहीं होगा।
वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामी होगा। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं। मान लो
कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये विधेयक संविधान के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार कई मुद्दों पर अपनी विफलता छिपाने के लिए ये विधेयक लाई है।
नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल, और नाकामी कोई एकाद नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूँ। नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है।
तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने प्रस्तावित कानून को गलत, तर्कहीन और मनमाना करार दिया। संसद ने आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी और लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित किया जा चुका है। विधेयक का उद्देश्य आव्रजन कानूनों का आधुनिकीकरण करना है। इसमें केंद्र सरकार को पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज, वीजा और पंजीकरण के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री कल बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंतोंगोन तान शिनवात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। शुक्रवार को होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय बिम्स्टेक समृद्ध, अनुकूल और मुक्त है। भारतीय नौसेना ने आज 6 मेगावाट क्षमता के मध्यम गति के समुद्री डीजल इंजन के डिजाइन और विकास के लिए मेक वन श्रेणी के अंतर्गत परियोजना स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता नई दिल्ली में किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड के साथ किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत 50% से अधिक स्वदेशी सामग्री वाले प्रोटोटाइप डीजल इंजन का विकास 270 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2024-25 में 5,150 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 5,600 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। जादूमढ़ी सिंह मांडेंग बम विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 50 किलो के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ब्राजील में जादूमढ़ी ने क्वार्टर फाइनल में कड़े मुकाबले में ब्रिटेन के एलिस ट्रॉबीस को शिकस्त दी। इधर आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मैच में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।